हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रूहान जबरदस्ती अनाही को जंगल में लेकर तो आ चुका था, लेकिन अब उसे बार बार रोता देखकर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अनाही फिलहाल वहां रखी छोटी सी स्कूल बेंच पर बैठी थी और रूहान उसके आसपास घूमकर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिससे वो अनाही को स्माइल करवा सके। वो वहां से कुछ दूर लगे ब्लू कलर के फ्लावर्स लेकर आता है जो दिखने में बेहद खूबसूरत थे। फूलों को लेकर वहीं घास पर बैठ जाता है और फिर अनाही की तरफ वो फूल बढ़ाते हुए बोलता है, मैडम जी, ये कैसे लग रहे हैं? अनाही पहले एक गहरी सांस लेती है और फिर उसके हाथों से वो फूल लेकर वहीं नीचे फेंकते हुए बोलती है, हम क्यों उन फूलों को बर्बाद कर रहे हैं? ये वहीं अपनी जगह पर ज्यादा अच्छे लग रहे थे, अब ये मर गए हैं, इनका कोई काम नहीं है। अनाही की ये बात सुनकर रूहान का चेहरा उतर गया। उसने लगभग रोती हुई आवाज में कहा, मैडम जी, आप कब तक मुझे ऐसी बातें करेंगी? प्लीज नॉर्मल हो जाइए ना, सब कुछ ठीक हो चुका है, अब आप भी ठीक हो जाइए। अनाही ने गुस्से में कहा, आपको कैसे पता कि सब कुछ ठीक हो चुका है? आपने किसी से बात की है क्या? मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ठीक हुआ होगा। विहा अभी भी रो रही होगी, वेदान जी भी रो रहे होंगे, मम्मी जी को भी मेरी जरूरत होगी। रूहान आगे बढ़कर अनाही के दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोलता है, आप एक बार खुद को विहा की जगह महसूस करके देखिए मैडम जी, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपको सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होगी, विहा की या फिर मेरी? मुझे पता है कि आप वहां रहकर सब कुछ ठीक करना चाहती हैं, लेकिन वो सब आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ आपकी खुद की हेल्थ है जिसे आप रो रोकर फिलहाल खराब कर रही हैं। अनाही को रूहान की बात काफी हद तक ठीक लगने लगी थी, लेकिन फिर भी उसे गुस्सा तो आ रहा था। रूहान कैसे उसके साथ जिद कर सकता है और उसे ऑर्डर दे सकता है? रूहान ने जब देखा कि अनाही के चेहरे पर अब भी गुस्सा था तो उसने आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, ठीक है मैडम जी, मैं आगे से फ्लावर्स नहीं तोड़ूंगा, पर आप अपना मूड तो ठीक कर लो। अंधेरा होने के साथ साथ वहां पर जुगनू आने लगे थे जिन्हें देखकर अनाही ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, अब आप बच्चों की तरह मुझे मनाने की कोशिश करना बंद करिए, मैं ठीक हूँ और घर चलते हैं, सबके लिए खाना बनाएंगे और फिर हॉस्पिटल में देकर आएंगे। उसकी इस बात पर रूहान ने हामी भरी और फिर जल्दी से घास से उठकर अनाही के फोरहेड पर किस कर लिया। थोड़ी देर बाद वे लोग निमानी हाउस के लिए निकल गए। फ्री हॉस्पिटल में वेदान जैसे ही अंदर पहुंचा था, उसने देखा कि विहा बेड पर सोई हुई थी। अनाहा किताब उसके पास बैठकर हल्के हल्के से उसका सिर सहला रही थी। निवेदिता की आंखों में भी अब आंसू नहीं थे, शायद वो भी रो रोकर थक चुकी थी। वेदान धीमे कदमों से निवेदिता के पास जाकर बोला, आप चाहिए रेस्ट कर लीजिए। निवेदिता वेदांत के बोलने से जैसे होश में आई हो, उसने धीरे से पलकें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम अपना और अपनी टोमेटो का ख्याल रखना और ज्यादा चीजों के बारे में मत सोचना, जो हो गया सो हो गया, शायद भगवान को यही मंजूर था, हम किसी चीज को बदल नहीं सकते हैं। हाँ, सुबह आकर तो बिल्कुल नहीं। वेदांत ने भी हल्के से मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ डोंट वरी, अब मैं नहीं रहूंगा और टोमेटो को भी नहीं रुलाऊंगा। ये सुनकर निवेदिता ने गहरी सांस ली और फिर उठकर कमरे से बाहर चली गई। वेदांत आहिस्ता से विहा के पास आकर बैठा और फिर बिल्कुल निवेदिता की तरह उसके बालों में हाथ घुमाने लगा ताकि उसकी नींद ना खराब हो जाए। अनंत और राव्या दोनों ही अब विहा से मिलकर वापस घर जा रहे थे। राव्या का मायूस चेहरा देखकर अनंत को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने आहिस्ता से उसका एक हाथ पकड़ते हुए कहा, बीवी, कितनी देर ऐसी बुरी सी शक्ल बनाकर रखोगी? क्या विहा घर आ जाएगी तब भी तुम ऐसे ही रहोगी? राव्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, उसके सामने मैं क्यों ऐसे रहूंगी, पर फिर भी चाहकर भी मैं अपना मूड ठीक नहीं कर पा रही हूँ। अनंत ने कुछ सोचते हुए कहा, तो क्या हम कहीं बाहर चलें, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाए? और अगर ज्यादा ही बुरा लग रहा है ना कि न्यू बेबी नहीं आएगा घर में, तो हम भी बेबी प्लान कर सकते हैं। राव्या ने घूर कर अनंत की तरफ देखा और फिर उसके कंधे पर मारते हुए बोली, आप किसी भी सिचुएशन में सीरियस नहीं हो सकते हैं ना, आपको ये सब कुछ मजाक लग रहा है, विहा कितनी प्रॉब्लम में है। अनंत ने गहरी सांस छोड़कर अपनी ड्राइविंग पर फोकस करते हुए कहा, तो क्या तुम प्रॉब्लम में होकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो? कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो यार, अगर तुम मिस्टरी से करके साथ मिलोगी ना उसे जाकर, तो वो बेचारी और ज्यादा परेशान हो जाएगी। राव्या का अनंत के साथ बहस करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी आंखें बंद करके सीट पर अपना सिर टिका लिया। रूहान और अनाही दोनों ने मिलकर सबके लिए खाना रेडी कर लिया था, फिर आप दोनों हॉस्पिटल जा रहे थे। करीब आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के सामने जाकर रुकी। अभी रात के करीब 8 बजने वाले थे, इसलिए हॉस्पिटल लाइट से जगमगा रहा था। वे दोनों तेज कदमों से चलते हुए अंदर गए और फिर सीधा काशी और राधेश्याम के वार्ड में चले गए, जहां अब निवेदिता, माधवी और राधिका भी बैठी थीं। अनाही ने मुस्कुराकर सबको गुड इवनिंग कहा और फिर सबके लिए खाना लगने लगी। काशी को ये देखकर अच्छा लग रहा था कि उसकी बेटी अच्छे से सब कुछ संभाल पा रही है। उन सबको खाना देने के बाद अनाही जैसे ही वार्ड से निकलकर विहा के वार्ड में जाने लगी, रोहान ने रास्ते में ही उसे रोकते हुए कहा, उनको खाना मैं देकर आता हूँ, आप बैठिए यहाँ बेंच पर, बस 10 मिनट में वापस आ जाऊँगा। अनाही को रोहान पर बेहद गुस्सा आ रहा था, पर अफसोस वो कुछ नहीं कर पा रही थी। आखिर में उसने गहरी सांस भरते हुए कहा, ठीक है, आप देकर आइए, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार वेदांत जी को बोल देना कि वो खाना खा लें। रोहान ने आंखें छोटी करते हुए कहा, वो इतने छोटे भी नहीं हैं कि उनको ये भी बताना पड़े कि ये खाना खाने के लिए है, ना कि फेंकने के लिए। चौहान की बात सुनकर अनाही ने अपना सिर पीट लिया, पर साथ ही साथ उसके दिमाग में एक आइडिया भी आ रहा था। हो सकता है इसी वजह से रोहान और वेदांत के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए और वे दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगे, चौहान की नफरत खत्म हो जाए और वेदांत को भी लगे कि उसका भाई इतना ज्यादा बुरा नहीं है। तो अनाही ने उसे दोबारा रोकने के लिए नहीं कहा और चुपचाप जाकर बेंच पर बैठ गई, जैसा कि उसे रोहान ने कहा था। तो वहीं रोहान भगवान का नाम लेकर विहा के वार्ड के अंदर जाता है। वेदांत अब भी विहा के बेड पर बैठा था, उसका हाथ पकड़े और उसके चेहरे को देख रहा था। रोहान अपना गला सही करते हुए बोलता है, मैडम जी ने टिफिन भेजा है आपके लिए, खाना खा लो, बाद में ये वैसे भी ठंडा हो जाएगा, और विहा को भी खिला दो, उसके लिए इसमें अलग से खिचड़ी बनाई है। रोहान ने सब कुछ एक सांस में बोल दिया था और टिफिन को वहीं टेबल पर रखकर वो तेज कदमों से वापस वार्ड से बाहर भी चला गया। उसने वेदांत के जवाब का इंतजार भी नहीं किया। वहीं वेदांत को ये देखकर हैरानी हो रही थी कि रोहान उसे खाना देने आया है, और साथ ही साथ उसे बुरा लग रहा था कि क्या उसने अनाही को इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल कर दिया है कि अब वो उसे खाना देने तक नहीं आ पाई, अपनी बहन को देखने भी नहीं आई एक बार।
उसने एक नज़र विहा के चेहरे को देखा और फिर उसके हाथ को किस करते हुए बोला, आई एम सॉरी टोमैटो, मुझे लगता है मेरी वजह से तुम्हारी बहन भी परेशान हो रही है और तुमसे भी नहीं मिल पा रही है। प्रॉमिस, मैं आगे से ख्याल रखूंगा और अपनी लिमिट में रहूंगा। मैं कभी भी उसे अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मुझे उसे खोना नहीं है, हमेशा अपने पास रखना है, अपनी अच्छी दोस्त की तरह, और कसम से मैंने कभी उसे गंदी नज़रों से नहीं देखा। इतना बोलते बोलते वेदांत की आवाज़ बैठने लगी थी, फिर उसने अपना गला सही किया और विहा की गाल को सहलाते हुए धीरे से बोला, टोमैटो उठो, चलो खाना खा लो।